तो अजीज साथियों, मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, अगर आपको मुझे अल्लाह ताला कुछ सुनने का मौका देता है ना, तो ये हमारी खुश नसीबी है। और यहाँ लजीना यस्तमेउ नल कौल है, अगर आपने अरबी खोली हुई है सामने, अल कौल लोगों की जो बातें हैं ना वो कौल है। नकिरा उर्दू में आप सुनते हैं, मार्फ और नकिरा, बस उसको जहन में ले। इसम नकिरा क्या होता है? आम चीजें, किताब उन कुर्सी उन, उर्दू में कह दें कुर्सी किताब ग्लास, ये नकरे हैं, हर एक के पास हैं, लेकिन जब अल लग जाता है तो खास। तो यहाँ अल कौल से क्या मुराद है? मुफस्सरीन कहते हैं अल कौल क्या है, बल हुआ कलाम अल्लाह, ये कुरान का नाम है या नबी का कौल है, और वो वही होता है। नबी खुद से नहीं बोलते, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। तो यहाँ अल कौल में कुरान का सुनना। मैं यहाँ फिर जुमला बोल दूं, अल्लज़ीन यस्तमेउन अल कौल, जो दौरे कुरान को गौर से सुनते हैं, जो तर्जमातुल कुरान को गौर से सुनते हैं। हम लंबी बातें तो करते ही नहीं, वो तो इसके बाद की बातें हैं। किसी को जिस फेक से जाके पढ़ना है उससे पढ़े, जिस मसलक से उसकी उनसियत है उनसे पढ़े, नो प्रॉब्लम, कुरान तो सबका एक है ना। देखिए आज मुसलमानों के अगर 73 नई फिरके हमें नजर आ रहे हैं तो 10-12 तो दिखते ही है ना। कोई एक फिरका आप मुझे बताएं ईस्ट से वेस्ट तक के मुस्लिम्स को देखकर जो ये कह दे कि मैं इस कुरान को नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है कि कुरान को ना मानने का मतलब कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, समझ रहे हैं ना। तो बस सबका कॉमन कुरान, और उसको अगर कोई चेंज करता है, आपको पता है कि इंग्लिश जुबान का सबसे पहला तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन किसने किया? एक नॉन मुस्लिम ने किया। गुजराती जुबान में मैंने सुना था किसी के बारे में कि किसी शख्स ने कितने साल गुजराती सीखी, कोई फॉरनर था, गोरा था, इतनी मेहनत वही करते हैं आज के दौर में इल्म के लिए। उसने पूरी डिक्शनरी पढ़ी सीखी, क्यों? ताकि वो बाइबल का गुजराती में तर्जुमा कर सके। वो अपने दीन को फैलाने में कितने हौसलों से जुटे हुए हैं। क्या आज मैंने और आपने, हम मुसलमानों ने इस कुरान को दूसरी जुबानों में फैलाने के लिए कुछ किया? और दूर क्यों जाऊं, नॉर्वे में मेरे इल्म तक जो बातें आती हैं और साथी बताते हैं, पूरे कुरान पाक का जो तर्जुमा मिलता है ना नॉर्वे में, अगर तो वो एक नॉन मुस्लिम ने किया हुआ है। तीसरी नस्ल है माशाल्लाह हमारी उस मुल्क में जो नॉर्वेजियन सीख रही है, और सकता है अब तो चौथी भी आ गई है। मुझे नहीं पता किस लेवल पे किसने किया, लेकिन हम क्यों मजबूर हैं किसी नॉन मुस्लिम का ट्रांसलेशन लेने में? इसलिए कि ट्रांसलेशन जो होता है ना उसको चेक करना बहुत आसान है। बस आप देखिए ना, मैं आपके सामने कुरान की एक आयत खोलूं, उसका तर्जमा पढ़ूं, और रिकॉर्डिंग तो एक एक लफ्ज की होती है। आप अपने फोनों पे कर लेते हैं, आप जाइए नेट से हर साल का दौरा कुरान खोलें, उसका तर्जमा जाकर मुख्तलिफ लोगों को दे दें कि इसको सुन के बताएं कि ये कौन है। ग्रामर तो नहीं मैं बदल सकती, और क्राइटेरियन तो बड़ा सख्त है, अल्लाह की किताब को कौन बदल सकता है। तो क्या पता चल गया कि कम अज कम हम कुरान का तर्जमा तो सीखें। देखिए मुझे आपको क्या पता है कि हमारी जिंदगी कितनी है, वल्लाही अभी तो ये तक नहीं पता कि हम रमजान तक पहुंचेंगे भी कि नहीं। आज बैठे यहां नियत करें, चल के आना पड़े, खड़े होके आना पड़े, एड़ियों के बल चल के आए, दूर हो के करीब हो, हमने इस कुरान को सीखना है। लोग कहते हैं तर्जमे वाले कुरान घर में सीख लेंगे, शौक से सीखिए, खुद पढ़ने से नहीं आता, कुरान सुनने से आता है। इसकी खूबी है उतलु माऊ ही या इलाही, पढ़ सुनाइए आप जो कि आप पे किया गया, सुनने से आता है। आप कहते हम घर से सीख लेंगे, आप सब जितने साथ इधर बैठे हैं और जो लोग घरों से सुन रहे हैं इस वक्त भी, जहां भी बातें होती हैं, जमीन आसमान का फर्क होता है क्लासरूम में एक उस्ताद और प्यारे साथियों के साथ बैठ के सुनने में और अकेले में सुनने में। वजह हदीस में आता है कि जहां लोग अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होते हैं, और जिक्र से मुराद वहां इल्म है, किताब का नाम जिक्र है, उस महफिल को फरिश्ते घेर लेते हैं। क्या आपको एक स्पिरिचुअलिटी नहीं महसूस होती? जब कुरान खुलता है ऐसे लगता है छत फट रही है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम डायरेक्ट कुरान की आयतें लेकर आ रहे हैं। ये माहौल घरों में नहीं बनता। वो सीखें जो बेचारे जा नहीं सकते। अब कोई रहते ही दूसरे शहर में और वो एक महीना आके आपके साथ तो नहीं रह सकता ना, ये तो अल्लाह आसान कर दे तो होता है, वरना मुझसे पूछिए ये कितना जुएशीर को लाने वाला काम है जो अल्लाह आसान करता है। वल्लाह ही ये सबसे मुश्किल काम है जिस पे अल्लाह आसान कर दे कि अल्लाह के दीन को सीखने और सिखाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। हम तो अभी अपने आप को सहला ही रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल है एक पौधे को आप एक जगह से उठा के जड़ें बने दूसरी जगह लगाएं, मुरझा जाती हैं चीजें। कितना वक्त लगता है सुनाने वालों को अपने दिल दिमाग जहन को उस जगह उस माहौल उन जगहों पे सेट करने के लिए। ये कोई प्री रिकॉर्डेड चीजें थोड़ी हैं जो मुंह से निकलनी है, हर चीज का असर होता है, तो ये अल्लाह आसान करता है। तो नियत करें, आपके लिए शहर में अगर अल्लाह ने अरेंज किया है, अगर अल्लाह का फैसला है, ये मैं तो वही कहती हूँ कि हमें उसी जात पे भरोसा है जो हमेशा हमारे मुंह की निकली बातों को बुरी करा देता है। मुझे एक सहाबी की बात याद आ गई है। एक जंग का मौका था, अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि क्या तुम जाना चाहते हो अल्लाह के दीन के लिए। जरा दूर का सफर था, मामला था कुछ। एक सहाबी बड़े प्यारे हैं, उनका नाम भी मेरे दिमाग में है, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लम अगर आप बरकुल घिमाद, दूर दराज जगह, बस आप अपने लिए ऐसे सोच लें कि जैसे हमारे कल्चर में कोह काफ नहीं कहते, कोह काफ जाना है जी। कहा अल्लाह के नबी अगर आप हमें बरकुल घिमाद तक भी जाने को कहेंगे तो हम जाने को तैयार हैं। तो आप और मैं इस शौक में ये कहें, जहां जाना पड़ा जाएंगे, जिधर जाना पड़ा जाएंगे, अल्लाह हमें ले जाए, महरूम ना करे। मुझे अभी तक फ्रांस की या पेरिस की यूनिवर्सिटियों की लोकेशंस नहीं पता। मेरा इल्म बढ़ाएं, आप में से कोई बच्ची इस शहर में कोई यूनिवर्सिटी है, कहाँ है, किधर है, वहां जो लोग जाते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, बच्चे जो पढ़ने आते हैं सारे शहर से आते हैं, जहां तलब होती हम जाते हैं, और यूनिवर्सिटी वालों के सर पे कोई एहसान चढ़ाते हैं। कभी उनको कहना पड़ा खुदा के लिए आ जाओ हम आपके लिए बसों का इंतजाम कर देंगे, दूसरे मुल्कों से लोग जाते हैं ना किसी यूनिवर्सिटी में, क्या मिलता है? एक डिग्री, कुछ इल्म, कोई फन, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह की किताब सुनने से क्या मिलता है? अभी एक जुमला कई दफा बोल चुकी हूँ, हिदायत मिलती है, शाबाश। आपकी किचन में चलिए कोई मिसाल ले लेते, हैलोजिन ओवन है, आपको चलाना ही नहीं आता, क्या फायदा उसका? आपको देर हो रही है, मेहमान आ गए हैं और आपने जल्दी में खाना तैयार करना है, और आपका चॉपर पड़ा है जिसमें आप प्याज टमाटर सब कुछ क्रश कर सकती हैं, वो आपको चलाना नहीं आ रहा, और कुंडी डंडा निकाल के कूटती हैं, तो हर एक सिल के साथ आंसू नहीं निकलेंगे? याद रखिए, ये बात लिख लें, जब किसी चीज को इस्तेमाल करने का तरीका आ जाता है ना, तो हमारी जिंदगी में आसानियां आती हैं। आज उम्मत मुस्लिमा कई जगह नाकाम दिखती है, बच्चों की तरबियत में नाकाम, रिश्ते ढूंढने में नाकाम, मर्द बेचारे कारोबारी धक्के खाते हैं नाकाम, इल्ला माशाल्लाह, उसकी वजह यह कि तरीका नहीं आता। जब बहनें अपने मसले बयान करती हैं, मैं कहती हूँ ये बताएं कि आपका रिश्ता किया किसने था? आप कह रही हैं फलां भी ये भी चीज़ है, ना नमाज पढ़ते हैं ना ये है वो है, तो जब रिश्ता किया था तो नहीं देखा? कहते माँ बाप ने जिधर देखा कर दिया। अब मैं उनको कुछ नहीं कहती, क्योंकि पसंदीदा अमल नहीं है कि किसी को उसके माँ बाप के खिलाफ करें, लेकिन मैं अपने दिल में फौरन सोच लेती हूँ कि माँ बाप के गलत फैसले की सजा बेटी भुगत रही है, और इसी तरह कई बेटे भुगतते हैं। तो सीख लेना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए सीख लिया, अब क्या होगा? आप सोचें, आप खुद से पूछिए, करना क्या है? सीख लिया जी, सुन लिया जी, आगे बोलें, नेक्स्ट। अल्लाह ताला कहते हैं फयत तबे ओ नाखसना हो, अगला मरहला। पहला क्या था जिसको अभी तक कवर किया? अल्लज़ीन यस्तमेउनल कौल, वो लोग जो तवज्जो से सुनते हैं बात को, फिर इसकी अच्छी बात की पैरवी करते हैं। बात समझ गए? तो हिदायत के रास्ते का दूसरा माइल स्टोन या दूसरी सीढ़ी, हिदायत या कामयाबी का दूसरा जीना क्या है? फयत तबेउना अहसना हो, उसके अच्छे अहकामात के ऊपर अमल करना। सच बताइए, मैं अब आपसे ही सवाल करूंगी, कुरान पाक को अपनी जुबान में समझें कि ना समझें, लेकिन क्या इस पे अमल करना लाजिम है कि नहीं? आप कहते हैं कहाँ लिखा है, दिखाएं कि सहाबा ने और सहाबियात ने बच्चों को घर छोड़ा, रुलाया और घर बंद किए और जाके जी कुरान के तर्जमे सीखे। पहली बात है उनको ज़रूरत ही नहीं थी, उनको तो अरबी आती थी। दूसरी बात है, मैं मान लेती हूँ कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका अमल था। यत तभी उन अफसना हूँ, क्या इसके ऊपर कोई ऑप्शन है कि किसी भी शहर या किसी मुल्क के चंद लोग इसको सीख लें? आलिम कह दें उनको, हम कारी साहब कह दें, हाफिज साहब कह दें, मुफ्ती साहब, और बस वो इसके ऊपर अमल करें, मुझे आपको नहीं करना। अब मैं एक जुमला बोलूंगी, गौर से सुनिएगा, अल्लज़ीना यस्तमेउनल कौल, ये आपकी मर्जी है, फर्ज नहीं है अगर कुछ लोगों के ख्याल में, लेकिन फयत तबेउना अहसनहू, ये सारी उम्मत पे फर्ज है। ये कुरान क्यों उतरा? ये एक मैनुअल है, ये किताब हमें जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाती है, और हमारे पास दुनिया में रहते रहते इतने काम होते हैं, हम कहते हैं इसको बाद में पढ़ेंगे, फारग होंगे, कब्र में तो बड़ा वक्त है वहां पढ़ेंगे, और जन्नत में जाके पढ़ लेंगे इस कुरान को, जरूरत कब थी? मसलन देखिए कि कोई ड्राइविंग करने का शौकीन है और वो रूल्स वाली बुक ना पढ़े जो उसकी सेफ्टी गार्ड है, जिसके तहत उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना है, कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं पहले ड्राइविंग चेक कर लूं, सीख लूं, फिर पढ़ूंगा इसको बाद में, हादसा होगा कि नहीं होगा? यकीन कीजिए, आज जो हादसे हो रहे हैं ना हमारे इर्द गिर्द, बहुत सारे हादसे हैं। आप कहेंगे किधर है, पहले गाड़ियां टकराती थी, जहाज टकराते थे, ट्रेनें पटरियों से उतरती थी, आज वल्लाही लोग आपस में टकराते हैं। आज हमारी खानदान की गाड़ियों की बोगियां उतरी हुई दिखती हैं। आज हमारे मर्द बेचारों को पता ही नहीं चलता हलाल और हराम का फर्क रख के कैसे माल कमाया जा सकता। तो अमल तो लाजमी है, और आप में चाहते हैं कि हम अमल करें, बजाय इसके कि हम बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ पढ़ें फिर अमल करना आसान हो। हम थोड़ा सा सुन लें और ज्यादा अमल करें। मैं ऐसे कई साथियों को जानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिर्फ दौरे कुरान करते हैं, रमजान एक स्पेशल मंथ समझकर छुट्टियां ले लेते हैं। बहुत सारे लोग सारा साल बिजी स्केड्यूल होता है, वो सिर्फ दौरे कुरान में आते हैं और उसके बाद बेहतरीन मुस्लिमा बन जाती हैं। कल क्यामत के दिन ये तो कह सकते हैं ना कि अल्लाह हमने इतना तो जरूर सीखा था ना कि जो हमारे काम का था। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस पे अमल करना आसान होगा, और जिंदगी में इसकी बीस की मिसालें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब परहेज बताते हैं तो हम करते हैं ना, दवा देते हैं तो हम खाते हैं ना, और आम तौर पे आप इग्नोर किए रहते हैं, लेकिन जब चेकअप होते हैं तो आपको पता चलता है इतनी बीमारी है, तो फिर आप केयरफुल भी होते हैं। बस अगर वेइंग मशीन पे खड़े ना हो तो बहुत सारे लोग मानते ही नहीं हैं मैं मोटी हूँ। हमारी एक बहुत प्यारी आंटी थी, मेरी दोस्त की अम्मी थी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे, काफ़ी भारी जिस्म की थी, कहती मुझे तो नहीं लगता मैं मोटी हूँ, शीशे में पूरी नहीं आती मुझे, क्या शीशे ही पतला, मैं ज़रा सा दूर होकर अपने आप को देखूँ मैं तो अपने आप को पतला दिखता है। एक्टिव बहुत थी ना, तो कहती थी मुझे नहीं लगता मैं मोटी हूँ, पर जब मैं अपनी कमीज देखती हूँ तो मैं कहती मेरी है, यानी मेरी कमीज चौड़ी है, मैं नहीं मोटी। कई लोग ऐसे हैं जिंदगी में मानते ही नहीं है। तो अगर इस किताब के आईने में हमें अपना असल चेहरा दिख जाता है, वल्लाही हम शुक्रगुजार होंगे अल्लाह के भी और उस किताब के और उन साथियों के जिन्होंने बर वक्त हमें हमारा चेहरा दिखा दिया। मैं एक लम्हे के लिए सोचती हूँ तो मैं खुद कांपती हूँ, और अल्लाह ना करे कि हम में से किसी के साथ ऐसा हो। सारी जिंदगी हम अपने आप को नेक समझें, मैं अपने ऊपर लेती हूँ, आप सब तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लोग हैं, आप सब इस सोच के साथ यहाँ आए हैं ना और मेरी बात सुन रहे हैं ना कि मैं नेक हूँ, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ाती हूँ। आपको मेरा ज़ाहरी रंग रूप, मेरा पर्दा, मेरा सब कुछ दिख के लग रहा होगा कि हमारा ख्याल है कि ये एक अच्छी सिस्टर है, गुमान है ना आपका, हो सकता है सबका ना हो, लेकिन अगर क़यामत के दिन पता चले कि ये मेरा असल रूप नहीं था, और मुझे पता चले, आपको पता लग गया तो फ़र्क क्या पड़ेगा, आग में तो मैं नहीं जलना। फिर फरिश्ते और अल्लाह ताला वहां बताए, तुम लोगों की नजरों में नेक समझ के खुद को नेक समझती थी, तुम पहले इस किताब के आईने में तो खुद को ढालती तुम नेक थी कि नहीं, उस वक्त मेरी क्या ख्वाहिश होगी। कुरान में बीसियों बार है, वलौ रुद्दू वलौ अन्न लना कर्रतन फना तबर्रउ मिन्हुम कमा तबर्रउ मिन्ना, सूरह बकरा में दूसरे पारे का दूसरा तीसरा सफा। वो कहेंगे अल्लाह एक बार हमें दुनिया में वापस भेज, और हम बेजार हो जाएंगे उन लोगों से जिनके पीछे लग के हमने जिंदगियां जाया कर दी, हम उनसे ऐसे बेनियाज होंगे जैसे वो आज हमसे बेजार हुए हैं। तो आज वक्त है, नहीं पता कल होगा कि नहीं। आप और मैं अपने उन रिश्तेदारों को सोचें जो पिछले रमजान में थे आज नहीं है। मैंने भी अपने एक दो प्यारे खोए हैं इस साल में, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, उनको नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का आखिरी रमजान है, शायद हमें भी नहीं पता कि ये भी है कि नहीं। तो नीयत करनी है, इरादे करने के अल्लाह हमारे इस वक्त में बरकत दे दे। बात वापस आती है हिदायत पे, पहली क्या थी, अल्लज़ीना यस्तमेउनल क़ौल, दुआ करें कि अल्लाह सुनने वालों में बना दे। दूसरी सीढ़ी है, फयत्तबिउन अहसनहु, उसकी अच्छे हिस्से पे अमल करते हैं, अल्लाह इसमें भी अमल करने वाला बनाए। जवाब सुन लीजिए, रिजल्ट, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, और जिसको अल्लाह कह देता है कि ये हिदायत वाला है, मुझे बता सकते हैं कि उसके हिदायत वाला होने में कोई शक हो सकता है? अल्लाह की गवाही है कि दुनिया में हिदायत वाला होने के ये दो ही क्राइटेरिया है इस आयत की रोशनी में, यस्तमेउन अल कौल और फयत्तबिउन अहसनहु, एक तरफ सुनना और दूसरी तरफ पैरवी करना। हम जब किसी चीज को सुनते नहीं तो अमल नहीं आता। आप देखिए ना, आज बहुत सारे लोग बेचारे कहते हैं समझ नहीं आता क्या ठीक है क्या गलत, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, सोचते हैं ना। आप मुझे बताइए कि अगर आप और मैं खुद एक चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हमें दूसरों की सुनने की जरूरत पड़ेगी? नहीं करनी पड़ती ना। बस आप देखिए कि आपको खुद खाना पकाना आता है, कभी पूछना पड़ता है किसी से बिरयानी में क्या डालूं क्या नहीं, जितनी मर्जी मजे की बना ले, और अगर किसी को आती नहीं फोन करे अपनी दोस्त को कि जरा तरकीब तो बताना, तो दोस्त और वो कि अच्छा ये बिरयानी बनाने चली माशाल्लाह, इसका मतलब ये वैसी बना लेंगी जैसी मैं बनाती हूँ माशाल्लाह, लो फिर मेरी बिरयानी को कौन पूछेगा? सात मसाले बता देंगी, आठवां नहीं बताएंगी, और वो नहीं बताएंगी जिससे असल खुशबू और टेस्ट आता है। और क्या बस, असल में मेरे हाथ में अल्लाह ने बड़ा जायका रखा। आप बिरयानी बना के अगले दिन ले जाते, कहते हैं वैसी नहीं बनी जैसी तुम्हारी होती है, चक्कर क्या है? कहते बस ये तो फिर जालिका फजलुल्लाह ही यूती मैं, ये अल्लाह का फजल, उसने मेरे हाथ में बड़ा टेस्ट रखा। आप चख के देखो कोई मसालों की खुशबू नहीं आती। ये तो उनके हाथ का कमाल है, अंदर से खुश हो रहे होते हैं कि लोग कहे कि बस, वो कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला बिरयानी इल्ला अंती, तेरी बिरयानी से अच्छी किसी की बिरयानी नहीं। आप सोचिए कि दूसरों को हिदायत की तरफ बुला लेना ऐसे ही है जैसे आपने किसी को बिरयानी की तरकीब सिखा दी और आप, वो आपका एक सदका जारिया चल पड़ा। कोई अच्छी बात किसी को बताते हैं ना, वो आपके मेरे लिए सदका जारिया होती है। मन दाल अलल खैरी कफाइली ही, जो किसी को हिदायत की तरफ राह दिखाता है उसी जैसे हम बता के दूसरों को आगे निकल जाते हैं। हमारी भी बताई हुई बात से वो किसी तीसरे को बताते हैं, जिसको हमने बताई उससे वो अमल नहीं हो सका, दूसरे से हो गया। वल्लाही ये जब से व्हाट्सएप क्लासेस शुरू हुई हैं मैंने इसको कई दफ़ा ऑब्जर्व किया और अल्लाह के आगे सजदों में गई हूँ। वहाँ वहाँ से हमें मैसेजेस आ जाते हैं जहाँ अभी हमारे स्कूल का नाम या साथियों का वहम गुमान भी नहीं होगा। क्यों, ये कहाँ से होगा, वहाँ कौन जानता है? तो कहते वो आपकी कोई स्टूडेंट थी, फिर उन्होंने हमें ऐड किया था। चंद दिन पहले एक इन्विटेशन आई, जैसे डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं, तो वो कहाँ की थी? अफ्रीका के एक रेडियो स्टेशन से कि आपका हम कुछ प्ले कर दें। अफ्रीका का लफ्ज़ सोच के मेरे आपके जहन में क्या आता है? सात समंदर पार। मेरा सवाल ये था कि ये अफ्रीका में बात कैसे पहुंच गई? रहता है उधर कोई अपना? कहते बहुत है, और मेरा ईमान है कि बहुत होंगे। हम किसी दुनिया के कोने में जाएं, मुसलमान बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां मुसलमानों ने अपना रेडियो स्टेशन बनाया हुआ, वो कुछ छोटी पॉपुलेशन तो नहीं होगी ना। तो मैंने कहा अल्लाह तूने अपने बंदे चुने हुए हैं, जैसे चिड़ियों के जरिए दाने इधर से उधर फिकवा देता है ना, तितलियों के परों में से अल्लाह ताला इस तरह से फूलों के छोटे छोटे जर्रे फैला देता है, अल्लाह ने अपने इस कलाम को फैला देना। ना मैं अल्लाह की जरूरत और ना आप। वल्लाही इन बातों को जहन में रख कर आज यहां से हम उठेंगे कि मैं अल्लाह की जरूरत नहीं हूं, ना अल्लाह को मेरी जरूरत है ना आपकी जरूरत है। एक भी कुर्सी खाली नहीं रहेगी। आप कहीं जाते हैं ना, आपको कोई एक दो कुर्सी नजर आती है, आप कहते हैं ये खाली है, वहां भी फरिश्ते होते हैं। हाँ मैं नहीं होंगी ना, मेरी कुर्सी पे कोई और बैठेगा। मसला आप कहते हैं हम सब नहीं, मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, मैं नखरा करूंगी ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, भाग जाए, मुझे नहीं कोई जरूरत, तो इस जगह मेरे से अच्छा बात करने लाएगा, सच्ची बात करेगा, खरी करेगा, मुझसे खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से बल्कि आपको बताएगा। मैं तो सिर्फ सीधी सी बात आपको बता रही हूँ। इसलिए जो करेंगे हमारा अपना फायदा है, क्योंकि आखिर में इस आयत में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वाउलाइका हुम उलुल अलबाब, ये आप सबको टाइटल मिल रहा है। देखिए दो काम किए, अब तो याद हो गए होंगे। पहला काम यस्तमीउन अलकौल, दूसरा काम फयत्तबीउन अहसनहु। शाबाश, ठीक कह रहे हैं आप सब। पहला काम क्या है, गौर से सुने, और दूसरा क्या है, इसके अमल वाले हिस्सों पे अमल कर लें। अल्लाह ताला दो टाइटल दे के आपको भेज रहा है, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, आपको अल्लाह हिदायत वाला कह रहा है। आपके दिन सिरातल मुस्तकीम की मांगी हुई दुआएं कबूल हो गईं। अल्लाह को पता है 17 बार आप दिन में रो रो के मांगती हैं अल्लाह हिदायत दे दे, अल्लाह हिदायत दे दे, अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाह ले लो। और दूसरा टाइटल वउलाइकहुम उलुल अलबाब, यही हैं खालिस अकल वाले, अक्लमंद, जीनियस, इंटेलिजेंट, मुफक्किर, दानिश्वर, समझदार, बस यही लोग हैं। ये कैसे बनता है बंदा? देखिए दुनियावी एतबार से समझदार और अक्लमंद आप किसको कहते हैं? जो नफे का सौदा करे, थोड़े पैसों में अच्छी चीज खरीद लाए, थोड़ी मेहनत करे ज्यादा फायदा हो, ऐसी है ना, थोड़ी कुर्बानी दे तो बड़ा फायदा हो। इसी तरह याद रखिएगा, अल्लाह ने यहां अक्लमंद उन लोगों को कहा कि जिन्होंने थोड़ी सी अपनी जिंदगी में कमी बेशी की, तब्दीलियां की, हमेशा के फायदे ले गए। ये अक्लमंदी का सौदा। हम सहाबा किराम की कुर्बानियां पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, सीरत में अबू बकर, उमर और हजरत बिलाल और इनके किस्से हम सब के लिए नए नहीं हैं। कितनी कुर्बानियां दी, नया नया दीन आया तो उन्होंने अल्लाह के नबी को हर लिहाज से सपोर्ट किया, आज की जुबान में आप कहते हैं। आप मुझे बताइए कि नफे का सौदा था कि नुकसान का? मसलन चलिए उम्मत के सबसे प्यारे शख्स को तसव्वुर में लाइए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो। डे वन से जो शख्स इस्लाम के साथ जुड़ा वो अबू बकर था। अल्लाह के नबी सल्लम की गवाही मौजूद है, मैंने जिस पे भी इस्लाम को पेश किया उसने थोड़ा सा टाइम लिया, जिसको आप कहते हैं कुछ पेशरफ्त की, कुछ सोचो विचार किया, सोच के प्रोज एंड कॉन्स तोले, लेकिन थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स में पड़ा और अकल से इंसान सोचे तो आज भी आप किसी को इस्लाम की दावत दें तो वो जरूर सोचेगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक जैसे शख्स ने एक लम्हा नहीं लगाया और कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप सोचिए और बताइए, क्या उन्होंने नफे का सौदा किया कि नुकसान का? नफे का सौदा था। जब दीन का कोई मौका हमारी जिंदगी में आता है ना, अकल इतनी होशियार बन जाती है ना, ऐसे लगता है ये है हमारी बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर वेल विशर, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। फिर वो तावीलें सिखाएगी और सारी बातें उस वक्त समझ आएगी। हाँ, अकलमंदी ये है कि नाना ना घर नहीं खाली छोड़ते, नाना ना बच्चों को नहीं छोड़ते, नाना ना वो घर के बुजुर्गों को छोड़ के हम जाएंगे, नाना ना बसों में और बाहर जाएंगे और हम इस्लाम के नाम पे निकलेंगे। इतने उसके तहफ़ुज़ात होंगे, आप कह लीजिए कि इंसान कहेगा शुक्र है पहले ही समझ आ गया। बस अब हजरत इब्राहिम का नाम सुनते ही क्या जहन में आता है, कुल ना या ना रुखूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। इब्राहिम अलैहि सलाम के लिए तो हकीकी आग जलाई गई थी। आज तो उम्मत मुस्लिमा के आगे एक फर्जी प्रोपेगंडे है ना, ये तो सियासी आगे हैं, ये तो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग ताकि मुसलमानों के हौसले टूटे। प्रैक्टिकली देखिए, आपके सामने आग का अलाव जो आसमान से बातें कर रहा है और आपको खड़ा किया जा रहा है अल्लाह के नाम पे। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अकल बड़ी होशियार होती है, सिर्फ वही बंदा यस्तमे उनल कॉल के बाद फयत तभी उन अखसनहू के दर्जे पे आता है जो अकल की सारी तावीलात को पीछे डाल दे और कह देता कि समेना बताना, सुना है तो मानना। सोचों में पड़ जाए तो सच्ची बता रही हूं, ना तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे और ना हमारे मर्द दूर कमाइयां करने जाए। रिस्क लेकर ही कुछ मिलता है ना, कोशिश करके ही कुछ मिलता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हिदायत का ये तोहफा हमारे नसीब में करे। फिर आप देखिए कि हिदायत का नाम तोहफा क्यों है। अरबी जुबान में हिदायत के लफ्ज के लिए क्या लफ्ज आता है? हुदन, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हुदल्लिल मुत्तकीन, हुदल्लिन नास। लफ्ज़ हुदन जो है ना, ये हा दाल और या से है। और अगर अरबी जुबान में इस रूट वर्ड को आप ढूंढे ना, 268 आयतों में, यानी 268 आयतों में 316 बार ये लफ्ज आया है, 316 टाइम उस कुरान में जिसका तर्जमा आप सुनेंगे इंशाल्लाह कुछ दिन में। जब 316 बार लफ्ज हिदायत आ रहा है तो जरा सोचिए उस किताब का बुनियादी मजमून क्या है। आज एक जुमला बोलिए, कुरान किताब हिदायत है, ये मैनुअल ऑफ गाइड है, ये आपकी मेरी हैंड बुक है। कैसे जियो, कैसे मरो, बच्चों के रिश्ते कैसे करो, अच्छी बीवियां कैसे बनो, माशरे में कैसे रहो, जिस मुल्क में रहते हो उनके कवानीन को कैसे फॉलो करो, सोसाइटी को खूबसूरत तोहफे कैसे दो, ये किताब आपको सिखाती है। और हुदन, हदायत, हादी, ये वही लफ्ज़ है जिससे उर्दू में एक लफ्ज़ आप और मैं भी जानते हैं, हदिया। हदिया किसको कहते हैं? तोहफे को। तो गाइडेंस इज अ गिफ्ट, हिदायत अल्लाह का एक हदिया है। और किसको देता है? यहदी, वो राह दिखाता है किसको? मैं युनीब, जो उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें महरूम ना करे, इस हिदायत के तोहफे को हमारी जिंदगी में आम कर दे। जहाँ से मिलता है हक पैगाम ले लीजिए और अल्लाह ताला आपको मुझे इस किताब के अहसन हिस्से पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आप देखते हैं कि दुनिया में जब हमें किसी चीज़ की तलब होती है ना, तो हम जैसे तैसे करके वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जाने के बाद हमें पुरसकून तरीके से चीज़ मिलती है। क्योंकि 2-2.5 घंटे का ये सफ़र होता है, आज भी देखिए हमने 2 घंटे बात की है तकरीबन, यानी मेरा माइक लेने से अब तक हमने 1 आवर 49 मिनट बात की है, पता चला आपको 2 घंटों का। और अभी तो आपके हाथों में ना कुरान पाक थे और ना अल्लाह का कलाम, तो ये तो हम बातों की जुबान में समझ रहे थे। यकीन करें आपको वक्त गुजरने का एहसास नहीं होगा। और अक्सर साथियों को मैंने देखा है चौंक जाते हैं जब मैं बीच में बात करती हूँ ना, बस 15 मिनट रह गए हैं, खत्म होने वाला है, तो कई लोग ऐसे कांप जाते हैं कि रियली हम तो अभी आए हैं। ये कुरान की एक सकीनत होती है, ठीक है। तो जो जगह है ना, वहां जाने के बाद इंशाल्लाह आपके लिए अप्रोप्रिएट इंतजाम है। तो दीन का भी तो इल्म प्रोटोकॉल मांगता है ना। जमीन पे अगर आप बैठते हैं बहुत देर कुरान हाथ में होता है तो फोकस नहीं होता। मुझे तो हर जगह चेयर मिल जाती है। एक तो ये कि आप सब आज से ही नियत कर ले कि अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इसको आसान करे। दूसरी बात है कि अपनी इस नियत को दिल में ना रखें, दूसरों से कहना शुरू कर दें। जैसे इंग्लिश का एक जुमला मैंने बाद जगह मार्केटिंग में पढ़ा है, एवरी वन इज सेइंग दिस, चाहे वो कोई च्युइंगम है या कोई बबल गम है, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट दैट. ये बहुत ज्यादा बड़ा इंसेंटिव होता है वर्ड बाय माउथ. अपने प्यारों को ये कहने की बजाय मुश्किल है, दूर है, आज यहां बैठ के ये नियत करें आपने आना है कि नहीं आना, ये आपका मामला है. किसी दूसरे के साथ ये ना कहें जाना मुश्किल है. ये हिदायत की तौफीक छीनने वाली बात होती है, क्योंकि जहां हमारे लिए कुछ रखा होता है वहां दूर से जाना भी आसान है. कोई हमें कह दे कि हमारे हर कदम पे 100-100 यूरो के नोट होंगे, होते 100 का नोट, अच्छा मैंने गलत तो नहीं कह दिया, 500 का भी होता है. चले जी हम 500 की मिसाल देते हैं. अगर आपसे कहे कि आपके घर से लेकर उस जगह पहुंचने में हर कदम के नीचे से आपको 500 यूरो का नोट मिलेगा, कितने लोग जाएंगे? आप सच बोलिएगा, हाथ खड़ा करें. मैं तो जाऊंगी, मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगी, पैदल जाऊंगी. और साथ ही मैं ये भी सोच लूंगी कि मैंने गाड़ी में नहीं जाना, पैदल जाना है, मैंने वेट लूज करना है, और मैं निकल जाऊंगी 2-3 घंटे पहले. और एक और काम भी मैं करूंगी, छोटे छोटे कदम लूंगी. अच्छा आप बताएं कि मेरे कदम के नीचे तो 500 का नोट है, तो अगर मैं अपना हाथ एक पकड़ के किसी दूसरे को भी ले लूं तो उसके भी 2 नोट मेरे पास आ गए, तो मैं फिर अपने इस हाथ को क्यों छोड़ूंगी? मैं अपने दोनों हाथों में किसी को साथ लेके चलूंगी कि मेरा फायदा बढ़े. बात समझ गए? बस ये है एक टीम वर्क. तो फिर ये 500 यूरो तो कुछ भी नहीं. हिदायत दुनिया की सबसे कीमती चीज है. मेरी पहली टीचर ने एक जुमला मुझे सिखाया था आज से कई साल पहले. वो जुमला वाकई मुझे जिंदगी में बहुत सारे फैसले करने में मदद आज भी देता है. और मेरा पहला कुरान था ना, मैंने उसके गत्ते के अंदर वाली जगह पे लिखा हुआ था, आज भी मुझे याद है. अल्लाह ताला हर चीज बिन मांगे देता है, लेकिन 2 चीजें बिन मांगे नहीं देता, हिदायत और अपनी मोहब्बत, क्योंकि ये दुनिया की कीमती तरीन चीज है. तो आप मुझे बताइए, मैं मांगूंगी अल्लाह आसान करेगा? सूरत अनकबूत के आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना. जो लोग हमारे रास्ते में मेहनत करेंगे हम उनको अपने रास्ते जरूर दिखाएंगे. आप मेरे घर आना चाहें और मुझसे रास्ता पूछे तो क्या मैं नहीं बताऊंगी? तो हम क्या कहते हैं अपनी जुबान में? 100 बिस्मिल्ला. आप कई घर है, जमजम आए, मरहबा. फ्रेंच में क्या कहते हैं? अरे अगर नॉर्वेजियन कोई सुन रहा हो तो वेलकोमन, जी आया नू. अल्लाह ताला उन कदमों के रास्तों में पत्तियां नहीं फैलाता, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के पर फैलाता है. ये रेड कारपेट ट्रीटमेंट से बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है. तो इंशाल्लाह हम सब ने इसके लिए नियत करनी है. फिर आप देखिए कि जितनी तलब होगी तड़प होगी. एक बंदा भी आपके कहने पर आएगा, सोच लीजिए वो आपका सदका जारिया होगा. बस आप देखिए इमाम बुखारी रहमहुल्ला, अगर किसी एक के कहने पर दीन पे गए तो उसका सदका जारी. आज दुनिया के हर मुसलमान मदरसे में सही बुखारी की सूरत में पढ़ा हुआ है ना. तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे. रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्किहि व असहाबिहि अजमाईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा. या अल्लाह हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा. या अल्लाह हमें इखलास अता फरमा, रियाकारी से बचा, दिखावे से बचा, शर से बचा. या अल्लाह हमें शैतान के धोखे से बचा. या अल्लाह हमारे इन सब साथियों की जायज़ ख्वाहिशात को अपनी रहमत से पूरी फरमा. या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत और आफियत अता फरमा. या अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा. या अल्लाह जो साथी मजबूरियों की वजह से नहीं आ सके उनके लिए आना भी आसान कर दे. या अल्लाह हम सब के घरों पर अपनी रहमत फरमा. या अल्लाह बच्चों को आंखों की ठंडक बना. और या अल्लाह वो साथी जो किसी भी किस्म की ऐसी मुश्किल में है कि जो किसी से जिक्र भी नहीं कर सकते, या अल्लाह तो उनकी मदद फरमा. या अल्लाह ये वो काम है जो तेरे नबियों ने किया. या अल्लाह हमें इस काम में अपना हिस्सा डालने वाला बना. या अल्लाह हमें इस काम में दिल खोल कर आगे बढ़ने वाला बना. या अल्लाह हमें आज के दौर के मुहाजिर और अंसार बना. या अल्लाह हमें दूसरों की हिदायत की फिक्र लगा दे. या अल्लाह हमें अपनी हिदायत की इस दौलत की हिफाजत करने वाला बना. या अल्लाह किसी लम्हे कोई ऐसा शैतान हमारे ऊपर हमला ना कर दे कि हम हिदायत की इस दौलत से दूर हो जाएं. या अल्लाह कुछ लोग तो अंसार बनेंगे, तभी तो या अल्लाह गुनाहों को छोड़कर हिजरत करने वालों के हाथ थाम सकेंगे. या अल्लाह हमें आज के दौर में अंसारुल्लाह में शामिल कर ले. या अल्लाह हमें अब्दुल्ला बिन उबई के गिरोह के साथ ना करना. या अल्लाह हमें बीच रस्तों में रुकने वाले ना बनाना. या अल्लाह हमें अबू जहल के तौर तरीकों पर ना चलाना. या अल्लाह जिन लोगों ने नबी सल्लम की जिंदगी में उनका दिफा किया था, या अल्लाह हमें आज उसी दीन का दिफा करने वाले काम करके उनके बराबर कर दे. یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنے کام کے لیے چن لے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے، یا اللہ ہماری اولادوں میں برکت دے، یا اللہ سکون عطا فرما، یا اللہ جو بچے بن بیاہے بیٹھے ان کے نیک جوڑ ملا دے، جو بچیاں اپنے گھروں میں چلی گئی ان کے یا اللہ گھروں کو آباد رکھنا، اور یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد دی وہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پلانا، یا اللہ ہمیں جنت میں بغیر حساب کے داخل کرنا، یا اللہ امت مسلمہ کو ایک کر دے، یا اللہ ہمیں اتحاد دے دے، یا اللہ ہمیں دوسرے مسلمانوں سے محبت کرنے والا بنا، یا اللہ جو بھی دین کا پیغام دے یا اللہ وہ ہمیں اپنا بھائی اور اپنی بہن لگے، یا اللہ آج کے دور میں جب اسلام پہ ہر طرف سے حملے ہیں یا اللہ ہمیں اسلام کا دفاع کرنے والا بنا، یا اللہ ہماری نسلوں کو چن لے کہ وہ دنیا کو اس خوبصورت اسلام سے قریب کر سکے، اور یا اللہ ہم جس ملک میں جہاں بھی رہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ بھی یا اللہ مخلص کر دے، اور یا اللہ ہمیں ہدایت کی دولت دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والا بنا دے، اور یا اللہ جو کمی بیشی ہوگی اسے درگزر فرما، ہمارے استادوں پہ رحم فرما، ہمارے دین کے ساتھیوں پہ اپنا رحم فرما، اور یا اللہ خاص طور پہ ان سب ساتھیوں کے لیے دعا کروں گی جو اس سفر میں ہمارے معاون اور مددگار ہیں، یا اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھروں کی ان کے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے شوہروں کی عمروں میں صحت میں برکت دے، اور یا اللہ اس دین کے کام کی برکتیں یہ اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے بچوں میں دیکھیں، یا اللہ ہم تیرے کام کرتے ہیں تو ہمارے کام لے لے، یا اللہ ہم سے اپنے کام کروا اور ہمارے کاموں کو تو کر دے، یا اللہ ہمارے غم دلوں سے نکال کر ہمیں دین کا غم لگا دے، یا اللہ ہمیں دوسروں کی ہدایت کا غم لگا دے، یا اللہ ہمیں ہدایت کو ایک تحفہ سمجھ کر قبول کرنے والا بنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔